आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। भारतीय खलाबाज शुभांशु शुक्ला को ले जा रहा एक्सियोम 4 मिशन आज दोपहर बैनुल अक्वामी खलाई स्टेशन से मुंसलिक हो जाएगा। सीबीएसई साल 2026 से 10वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात साल में दो मर्तबा मुनक्कद करेगा। भारतीय महकमे मौसमियात ने बताया कि अगले 7 दिन के दौरान शुमाल मगरबी, वस्ती, मशरकी और शुमाल मशरकी भारत में मूसलाधार बारिश जारी रह सकती है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एससीओ रुकन ममालिक से सरहद पार की दहशतगर्दी पर लगाम लगाने की अपील की है। भारत की रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी इस साल अप्रैल में बढ़कर 8.8 अरब डॉलर्स हो गई है। और वियतनाम के वोंगताऊ में जारी अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की खवातीन टीम ने मजमुई खिताब जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। भारतीय खलाबाज शुभांशु शुक्ला को ले जा रहा एक्सियोम 4 मिशन आज दोपहर बैनुल अक्वामी खलाई स्टेशन से मुंसलिक हो जाएगा। खलाई तहकीक के भारतीय इदारे इसरो के मुताबिक ये डॉकिंग भारतीय वक्त के मुताबिक सहपहर 4:30 बजे होगी। बैनुल अक्वामी खलाई स्टेशन से जुड़ने के बाद ग्रुप कैप्टन शुक्ला नासा की ऑर्बिटिंग लेबोरेटरी में जाने वाले पहले भारतीय बन जाएंगे। एक्सियोम 4 ने 4 खलाबाजों के साथ फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से गुज़िश्ता रोज भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 12:01 पर परवाज की थी। बैनुल अक्वामी खलाई स्टेशन तक एक्सियोम 4 को ले जाने वाले ग्रुप कैप्टन शुक्ला खला का सफर करने वाले दूसरे भारतीय खलाबाज बन गए हैं। भारतीय फिजाइया के अफसर शुक्ला से पहले 41 साल कबल साल 1984 में राकेश शर्मा ने खला का सफर करके पहला भारतीय होने का एजाज हासिल किया था। वो रूस के सुयोज पर सवार थे। कल उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने अपने हम वतनों को पैगाम भेजा। उन्होंने कहा कि हम 41 साल बाद खला में वापस आए हैं और ये एक शानदार सफर रहा है।
41 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है।
मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक्सियोम 4 के कामयाब लॉन्च का खैर मकदम किया है और कहा है कि ग्रुप कैप्टन शुक्ला 140 करोड़ भारतीयों की ख्वाहिशों, उम्मीदों और तमन्नाओं को लेकर जा रहे हैं। शुक्ला के आबाई शहर लखनऊ में उनके वालदैन ने सैकड़ों तलबा के साथ उड़ान का नज़ारा किया। 10 अक्टूबर 1985 को लखनऊ में पैदा हुए ग्रुप कैप्टन शुक्ला ने साल 2006 में लड़ाका पायलट के तौर पर भारतीय फजाइया में शमूलियत इख्तियार की थी। वो मिग, सुखोई, डॉर्नियर और हॉक जैसे जंगी तैयारे उड़ा चुके हैं और 2000 घंटे से ज़्यादा का उड़ान का तजर्बा रखते हैं। मिशन के पायलट के अलावा भारतीय खलाबाज बैनुल अक्वामी खलाई स्टेशन में अगले 2 हफ्ते के दौरान काफ़ी मसरूफ रहेंगे। ज़्यादातर वक्त के दौरान 4 रुकनी अमला 60 साइंसी तजर्बे करेगा, जिनमें से 7 तजर्बे भारत के होंगे। इसरो के तजर्बे खला से मुतालिक मालूमात में इजाफा करने में मदद करेंगे और हयातियात और माइक्रो ग्रेविटी के असरात को समझने में ताउन करेंगे। इनमें से एक अहम तजर्बा फसल के बीजों की 6 अकसाम पर खलाई परवास के असर का पता लगाना भी शामिल है। दिल्ली से आशीष की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कल प्रगति की 48वीं मीटिंग की सदारत की और कानकनी, रेलवेज और आबी वसायल के कलीदी प्रोजेक्टों का जायजा लिया। माशी तरक्की और अवामी फलाह व बहबूद के नुक्ते नजर से अहम इन प्रोजेक्टों की बरवक्त तकमील, बैन एजेंसी तालमेल और मामलात को हल करने के मकसद से इनका जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि इन प्रोजेक्टों की अमलावरी में ताखीर से बढ़ती तखमीना लागत पर 2 गुना बोझ पड़ता है और शहरियों को ज़रूरी खिदमात और बुनियादी ढांचा फराहम नहीं हो पाता। प्राइम मिनिस्टर आयुष्मान भारत सेहत बुनियादी ढांचे के मिशन के जायजे के दौरान जनाब मोदी ने सभी रियासतों से अपील की कि वो आर्जुमंद ज़िलों पर खसूसी तवज्जो के साथ सेहत के बुनियादी ढांचे की तरक्की को तेज़ करें। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि गरीबों, हाशिए पर रहने वाले लोगों और बुनियादी खिदमात से महरूम आबादी के लिए मेयारी हिफ्जाने सेहत तक मसावी रसाई को यकीनी बनाया जाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने दिफाई शोबे में खुद कफालत को फ़रोग देने के लिए गैर मामूली और मिसाली तरीक़ेकार का भी जायजा लिया। उनकी वसीतर अफादियत का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जिक्र किया جس پر دفاعی شعبے میں ملک کی بڑھتی ہوئی خود کفالت کے ایک طاقتور ثبوت کے طور پر ملک کی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے عمل درآمد کیا گیا۔ حکومت نے اتر پردیش کے آگرہ میں جنوبی ایشیا کا آلو سے متعلق بین الاقوامی سینٹر قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں مرکزی کابینہ کی جانب سے کیے گئے فیصلوں کے بارے میں میڈیا کو جانکاری دیتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ اس سے خوراک اور تغذیے کی فراہمی کو بڑھانے میں مدد ملے گی، کسانوں کی آمدنی میں اضافہ ہوگا اور آلو اور میٹھے آلو کی پیداوار کو بہتر کر کے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے۔ اس کے علاوہ کاشتکاری کے بعد کا انتظام بہتر ہوگا۔ جناب ویشنو نے یہ بھی بتایا کہ حکومت نے 3,626 کروڑ روپے کی لاگت سے پونے میٹرو ریل پروجیکٹ مرحلہ 2 کی توسیع کے لیے تجویز کو منظوری دی ہے۔
اب تک کی جو لرننگ رہی اس لرننگ کو لے کے ایک نیا ماسٹر پلان آج کیبنٹ نے اپروو کیا ہے۔ جھارکھنڈ کا وہ حصہ جہاں پہ کول کی بہتایت رہتی ہے، یہ دامودر ریور کے ساتھ لگا ہوا دھنباد کا ایریا، یہاں پر جھاریا کول فیلڈ ہے۔ نیا ماسٹر پلان 5,940 کروڑ روپے کا ہے اور اس میں فنڈامنٹل چینجز جو آئے ہیں وہ سب سے بڑا انسٹیٹیوشنل ریسٹرکچرنگ، کیسے سسٹم کو اور اسٹرینتھن کریں۔ ٹیکنیکل لوگ ساتھ آئے، ورلڈ گلوبل ایکسپرٹس ہیں وہ سب ساتھ آئے، جو وہاں کے نواسیوں نے ورشوں سے جو نالج گین کی ہے اس نالج کا اپیوگ کر کے ہم ایک سولوشن لے کے آ سکتے۔
وزیر موصوف نے کہا کہ وزیراعظم کی سربراہی میں مرکزی کابینہ نے ایمرجنسی کے اعلان کے 50 سال منانے کی قرارداد منظور کی ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ خلائی مشن ایکزیوم 4 کو کامیابی کے ساتھ چھوڑے جانے سے متعلق قرارداد کو بھی منظوری دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی کابینہ نے اس مشن کو چھوڑے جانے کی کامیابی کا خیر مقدم کیا ہے، جو بھارت، ہنگری، پولینڈ اور امریکہ کے خلابازوں کو لے کر گیا ہے۔ سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن CBSE نے سال 2026 سے 10ویں جماعت کے بورڈ امتحانات سال میں 2 مرتبہ منعقد کرانے کا اعلان کیا ہے۔ نئے فریم ورک کے مطابق ابتدائی امتحانات فروری میں ہوں گے، جو سبھی طلبہ کے لیے لازمی ہوں گے۔ اس دوران بعد میں ہونے والے امتحان میں شرکت ان طلبہ کے لیے اختیاری ہوگی جو اپنی کارکردگی میں اضافے کے خواہش مند ہیں۔ کامیاب ہونے والے سبھی طلبہ کو اس بات کی اجازت ہوگی کہ وہ سائنس، ریاضی، سماجی سائنس اور لسانیات میں سے کسی 3 مضامین میں اپنی کارکردگی کو بہتر بنائیں۔ 2 مرحلوں کے نتائج کا اعلان اپریل اور بعد میں جون میں کیا جائے گا۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ اگلے 7 دن کے دوران ملک کے شمال مغربی، وسطی، مشرقی اور شمال مشرقی حصوں میں شدید بارش جاری رہے گی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گجرات خطے اور اوڈیشہ کے دور دراز علاقوں میں شدید بارش کا امکان ہے۔ ایجنسی نے ساحلی کرناٹک، مشرقی راجستھان، جھارکھنڈ، کیرلا، ماہے، وسطی مہاراشٹر، مدھیہ پردیش، اوڈیشہ، پنجاب، تمل ناڈو، پڈوچیری، کرائیکل اور اتراکھنڈ میں آج شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، چھتیس گڑھ، گنگے کے ترائی والے مغربی بنگال، ہریانہ، چندی گڑھ اور دلی کے دور دراز علاقوں میں بھی شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ ہماچل پردیش میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مانسون کی شدید بارش ہوئی۔ اس مدت کے دوران ریاست کے مختلف حصوں میں بادل پھٹنے اور سیلاب آنے کی اطلاعات ہیں۔ اب تک ملنے والی اطلاع سے متعلق بارش سے وابستہ واقعات میں مرنے والوں کی تعداد 5 ہو گئی ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
ہماچل پردیش میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران طوفانی بارش کی وجہ سے بادل پھٹنے، اچانک سیلاب آنے اور مٹی کے تودے کھسکنے کی اطلاعات ہیں۔ اس سے عام زندگی بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ دھرمشالہ میں اچانک سیلاب سے لوگ متاثر ہوئے ہیں اور اندرا پریا درشنی ہائیڈرو پروجیکٹ کے نزدیک عارضی پناہ گاہوں میں رہنے والے بہت سے مزدور سیلاب کے پانی میں بہہ گئے ہیں۔ اب تک 2 لاشیں برآمد ہوئی ہیں جبکہ 6 افراد اب بھی لاپتہ ہیں۔ ضلع انتظامیہ، NDRF، SDRF اور پولیس راحت اور بچاؤ کاروائیوں میں مصروف ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج کانگڑا، منڈی، شملہ اور سولن میں شدید بارش کے لیے ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ شملہ سے ریتیش کپور کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں حبیب الرحمن۔
وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے ایس سی او کے ممبر ملکوں سے سرحد پار کی دہشت گردی کی روک تھام کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کی مالی اعانت کو ہر حال میں روکا جانا چاہیے۔ جناب راجناتھ سنگھ نے آج صبح چین کے کنگ ڈاؤ کے مقام پر ایس سی او کے وزرائے دفاع کی میٹنگ میں شرکت کرتے ہوئے یہ بیان دیا۔
India has zero tolerance for terrorism. It manifests today through its actions. This includes our right to defend ourselves against terrorism. And we have shown that epicenters of terrorism are no longer safe and we will not hesitate to target them. We should also take proactive steps to prevent the spread of the radicalization among our youth.
उन्होंने कहा कि भारत इस बात पर यकीन रखता है कि इस्लाहात पर मबनी तकसीरियत ताउन को आगे बढ़ा सकता है और मुजाकिरात और इश्तराक के लिए मैकेनिज्म तैयार करके मुल्कों के दरमियान तनाज़ात को रोकने में मदद मिल सकती है। जनाब सिंह कल शाम चीन पहुंचे थे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा की तैयारियों के तहत कल बालतल में बेस कैंप पर जामे मुश्तरका मॉक ड्रिल अंजाम दी। ये मश गांदरबल के सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस की जेर निगरानी की गई। आज मनशियात के इस्तेमाल और इसके गैर कानूनी कारोबार के खिलाफ बैन अल-अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। इस मौके पर आज नई दिल्ली के डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में एक अहम तकरीब मुनक़द होगी। तफसील हमारे नामानिगार से।
बैन अल-अक़वामी माशरे को मनशियात के इस्तेमाल से निजात दिलाने के मकसद को हासिल करने के लिए ताउन और कार्रवाई को मुस्तहकम करने के लिए ये दिन मनाया जा रहा है। भारत में इसकी तकरीबात के हिस्से के तौर पर एक अहम तकरीब नई दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में मुनक़िद होगी, जिसमें समाजी इंसाफ और तफवीज़ इख्तियारात के मरकजी वजीर ममलिकत बी.एल. वर्मा मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत करेंगे। एक पैगाम में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 12 जून से लेकर आज तक नशा मुक्त भारत पखवाड़ा मनाने के लिए मनशियात की रोकथाम करने वाले ब्यूरो एनसीबी की भी तारीफ की है। जून 2025 तक नशा भारत अभियान सरगर्मियों के जरिए 15,78,00,000 लोगों में नशा छोड़ने के बारे में बेदारी पैदा की गई। पायल शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
बिहार में रियासती पुलिस मनशियात के इस्तेमाल, लत और गैर कानूनी स्मगलिंग के मामलों में इजाफे के पेश नज़र नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB की तर्ज पर एक खसूसी यूनिट कायम करने जा रही है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन ने कहा के यूनिट में माहिर पेशावर अफराद होंगे और वो मनशियात से मुतालिक मुनज्जम जराइम के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
जहां भी मादक पदार्थ के खिलाफ अभियान चलाया गया, जैसे पंजाब, हरियाणा, उसमें स्कूल, परिवार, सोसाइटी, वार्ड, सब जगह कोशिश किया गया है कि एक इसके विरोध में मुहिम छेड़। समाज के अंदर से विरोध होना चाहिए। अगर कोई गुमटी वाला बेच रहा है, कोई सब्जी वाला बेच रहा है, कोई घर से बिक्री हो रही है मादक पदार्थ, तो उसकी सूचना पुलिस को भी दें और उसको बॉयकॉट भी करें।
भारत में इस साल अप्रैल के महीने में मजमूई रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी FDI बढ़कर 8.8 अरब डॉलर तक जा पहुंची है। ये रकम मार्च 2024 के 5.9 अरब डॉलर और अप्रैल 2024 के 7.2 अरब डॉलर से ज्यादा है। वियतनाम के वोंगताऊ के मकाम पर जारी 17 साल से कम उम्र के एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारत की खातून पहलवानों की टीम ने मजमूई तौर पर कुल 10 तमगे जीते हैं। 23 साल से कम उम्र की खातून पहलवानों की जीत के बाद 17 साल से कम उम्र की खातून पहलवानों ने गैर मामूली अज़्म का मुजाहरा किया और भारत की जीत के जज्बे को बरकरार रखा। ये थीं खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं हबीबुर रहमान।
शुक्रिया जमीर। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने तारीख के सियाह बाब एमरजेंसी के 50 साल मुकम्मल होने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बयान को शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस और प्रताप की सुर्खी है, इमरजेंसी के दौरान कांग्रेस ने जमहूरियत को कैद किया और प्रेस की आज़ादी छीन ली। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में मरकजी काबीना ने पुणे मेट्रो रेल लाइन के तौसी मंसूबे को मंजूरी दी। झरिया कोलफील्ड की बहाली के लिए 5,940 करोड़ रुपये के नजरशानी शुदा प्रोजेक्ट को भी काबीना की मंजूरी।
और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। भारतीय खलाबाज शुभांशु शुक्ला को ले जा रहा एक्जियम फोर मिशन आज दोपहर बैन अल-अक़वामी खलाई स्टेशन से मुंसलिक हो जाएगा। CBSE साल 2026 से 10वीं जमात के बोर्ड इम्तिहानात साल में 2 मरतबा मुनाकिद करेगा। भारतीय महकमे मौसमियात ने बताया कि अगले 7 दिन के दौरान शुमाल मगरबी, वस्ती, मशरकी और शुमाल मशरकी भारत में मूसलाधार बारिश जारी रह सकती है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने SCO रुकन ममालिक से सरहद पार की दहशतगर्दी पर लगाम लगाने पर जोर दिया है। भारत की रास गैर मुल्की सरमायाकारी इस साल अप्रैल में बढ़कर 8.8 अरब डॉलर हो गई है। और वियतनाम के वोंगताऊ में जारी अंडर-17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की खवातीन टीम ने मजमूई खिताब जीत लिया है। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरनामा खत्म हुआ।